يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. اگر دیکھا جائے تو یہ آیت تو شراب سے متعلق ہے. ذرا سا اس کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے. یہاں حکم کیا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہو تو تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ ہم میں سے کوئی نشے میں نہیں ہوتا، لیکن سوال لکھئے کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے نماز؟ حتی تعلموا ما تقولون، کیا ہم نماز کا ترجمہ جانتے ہیں؟ ہم شعوری طور پہ نماز پڑھتے ہیں کیا؟ ہم رٹے رٹائے اور ایک عادت کے سٹائل کے اوپر ہی تو نہیں پڑھتے جا رہے نمازیں؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر آگے کچھ باتیں طہارت سے متعلق تھی، پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 44 سے 46 میں یہود کی کچھ نازیبا حرکات کا تذکرہ ہے جو کہ انہوں نے مختلف ادوار میں کی، اور ان کے علماء جو تھے وہ دین کے موضوعات کو بدل دیتے تھے. عام لوگ، چونکہ عوام جو تھی وہ ان پڑھ تھی اور لوگوں کو کتاب سے جوڑتے نہیں تھے، اور پھر جو دل چاہتا تھا کہیں یحرفون الکلم، جگہ سے بات کو بدل دیتے، کبھی یقولون سمعنا وعصینا، اور کبھی اللہ کے نبی کو دے کر رائنا کا لفظ بولتے تھے. تو یہ ان کی خیانتیں ہیں جس کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کر دی آیت 47 میں کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، کہ اللہ کے نبی پر جو نازل ہو رہے ہیں نا، اب اس پہ ایمان لاؤ. یہ سب آیتیں مدینہ میں لٹرلی جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ایک چھوٹی سی تصویر کشی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 48 کا موضوع شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی قباحت ہو جائے، کیونکہ یہ وہ واحد جرم ہے کہ جس کی توبہ کیے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو معافی نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور میں کہتی ہوں کہ جو ہماری ان پڑھ عوام ہیں، بیچارے دیہاتوں میں رہنے والے اور کسی نہ کسی آستانے سے جڑے ہوئے لوگ، صرف ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیجئے، کوئی تفسیر نہیں، کوئی اس کو بڑی بڑی باتیں نہ کریں، تو انشاءاللہ ان کے اندر سے شرک جو ہے وہ ختم ہوگا. پھر آیت 49 سے 50 میں یہود کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے، اور وہ کیا تھا؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، بڑا پاک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تھوڑا سا بھی. کیا پتہ چلا کہ اپنی تعریفیں کرنا، خود کو بہت نیک سمجھنا، یہ بھی بات پسندیدہ نہیں ہے. پھر آیت 51-52 میں یہود کی طرف سے مشرکین کی حمایت، کیا یہود کو ساتھ تو مسلمانوں کا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تو یہ بھی اہل کتاب. اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے انہوں نے کہا مشرکین مکہ تو زیادہ بہتر ہیں. کیا تھا جملہ ان کا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. آپ کو اگر اس کی اہمیت بتا سکوں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آج کے دور میں ایک دیندار کسی دوسرے دیندار کو اچھا کہنے کی بجائے کہ تمہاری جگہ سے بجائے وہ فلموں میں نیوڈیٹی پھیلانے والے وہی اچھے ہیں. کیسا برا لگے گا جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تعصب اور بغض آتا ہے نا، تو ایک دیندار دوسرے کو بعض دفعہ جہنمی بھی کہنے لگ جاتا ہے. اور کافر، ایک جملہ تو آج ہم بہت بولتے ہیں، چاہے بے شعورے پن میں بولتے ہیں، اور وہ کہے کہ جی یہ کافر آج کے مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ نان مسلم جو آج کے مسلمانوں سے اچھے ہیں، یہ ہمارے ملکوں سے تو وہ ملک اچھے ہیں. دیکھیے ہر بات کو کہتے ہوئے ضرور سوچئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا. پھر اس میں جبت اور تاغوت پر ایمان لانے اور کافروں کو اہل ایمان سے زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے والوں کو اللہ کی رحمت سے دوری کا مستحق بنایا گیا. سوال یہ کہ جبت کیا ہے؟ جبت بت کو، کاہن کو، ساحر کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بیکار چیزیں، سفلی چیزیں، ایسی عملیات جس کو اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، سپرسٹیشیس بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری چیز اس آیت میں تاغوت، تاغوت کو تو بس اب ایک لفظ میں کہیے کہ ہر طرح کا معبود، جھوٹے معبود، فالس گاڈس، جس کو ہر دور میں مختلف طریقے سے پروموٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد آیت 53 سے 55 میں یہود کی مسلمانوں سے دشمنی، اور یہ ساری آیتیں اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود رویوں کو دیکھ کر سامنے آ رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم لہم نصیب و من الملکی، کیا واقعی ان کا کوئی بادشاہت میں حصہ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کسی کو چھوٹا سا بھی کچھ نہ دیتے. نقیر کا لفظ آیا. اصل بات یہ کہ یہ حسد کرتے ہیں. اور اس میں جو سب سے زیادہ ایک چیز ہمارے لیے غور کی ہے وہ کیا ہے कि जब किसी के दिल में दूसरे के लिए हसद और बुग़ज आ जाता ना तो उसको उसकी खूबी नहीं दिखती। हम यक़सदून अन्नास अला मा आताकुम, अपने आप से पूछिए क्या मैं दूसरों की चीज़ों को देकर हसद तो नहीं करती, चाहे उसके कपड़े हैं, उसका इल्म है, उसकी औलाद है, उसके शौहर की उसके लिए मोहब्बत है, या उसकी बीवी बहुत इताअत वाली है। तो बस इतनी बात समझ लीजिए कि किसी को जो नेमत मिली है वो अल्लाह ताला का फ़ैसला है। फिर आयत 56 से 57 में बहुत ही भयानक नाक मंज़र है खालों के जलने का। जहन्नुम में जली हुई खाल को नई खाल से बदल दिया जाएगा। और अल्लाह ताला ने इसमें जो ये बात की कि इन्नल्लज़ीना कफरू के बाद अगर आप देखें कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, इससे क्या पता चलता है कि जिस्म पे जलने का जो असर है ना ये स्किन को होता है। आज मेडिकल ने इस चीज़ को प्रूफ किया कि खुदा न खास्ता अगर किसी को आग लग जाए तो दर्द कब तक रहता है, जब तक स्किन नहीं जलती। जब स्किन जल जाती है तो हड्डियों को दर्द नहीं होता। इस तकलीफ को मुस्तकिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि बदलनाहुम जुलूदन गैरहा। हदीस से भी ये बात पता चलती है कि जब इनकी खालें पक जाएंगी तो अल्लाह उनकी खालों को कैसे बदलेगा। अबू हुरैरा से रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काफिर की दाढ़ या उसकी कुचली का दांत उहद पहाड़ जितना हो जाएगा और इसकी खाल की मोटाई 3 दिन चलने की मुसाफत के बराबर होगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 7185। आपको मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे होगा, क्योंकि युमिनूना बिलगैब। जन्नत जहन्नुम आज आपके मेरे लिए गैब का मामला है। बस ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी को न जलाना, अल्लामा जिरना मिनन्नार, और किसी को कुफर पे मरने भी नहीं देना। आप मैं जितना अल्लाह की इस बात को आम करते जाएं हमारे इर्द गिर्द से इंशाअल्लाह ताला हर खराबी दूर होती जाए, यही हमारी ज़िंदगी का मिशन होना चाहिए। फिर इसके बाद आयत नंबर 58-59 में इस्लाम के सियासी असूल है, यानी इस्लाम में क्या अथॉरिटी है। लेकिन हर मुल्क का एक लेजिस्लेशन है, लॉ है, कवानीन है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात अमानात इलाहलीहा, यानी अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द कर दो, और जब लोगों में फैसले करो तो इंसाफ के करो। क्या पता चला? मुकम्मल यानी मुतलक, मुतलक वही लफ्ज़ है जिसे लफ्ज़ तलाक है, कम्प्लीट और गैर मशरूत अनकंडीशनल इताअत या सबमिशन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है। यानी मुसलमान या पूरी दुनिया का हर इंसान जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की कोई बात सुने तो फिर उसके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। आपको समझ आ रही है उसकी हिकमत के नहीं? आपको पर्दे की हिकमत समझ आ रही है कि नहीं? आपको सूद की बुराई नज़र आ रही है कि नहीं? डजंट मैटर, बस आपने मानना है। आप अपने बच्चे से भी यही चाहते हैं। अगर आप बच्चे से कोई बात करें और आगे से सवाल जवाब शुरू हो जाए, क्यों, क्या नुकसान है, इसे क्या होगा, तो आपको गुस्सा आएगा। तो हमें यकीन है कि अल्लाह ने जो बात कर दी वो हमारे फ़ायदे की है। उसके बाद उलुल अमर, उलुल अमर कौन होते हैं? जो उस मामले के ज़िम्मेदार हैं। मसलन देखिए कि किसी मुल्क के हुक्मरान वो कोई फ़ैसला करते हैं, आपके मुल्क के बारे में वो कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं। मसलन चांद नज़र आ गए, रोज़ा रख लिया जाए, आप रख लीजिए, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है इस पर ज़्यादा सोचना। इस तरह आप जहाज़ में सफ़र करते हैं तो मैनेजमेंट वाले कहते हैं सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो बांध ले। तो किसी मामले के उलुल अमर, इसमें मजहबी रहनुमा भी आते हैं, दूसरे इनकी बात मानने की कंडीशन क्या है कि वो बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत है कि नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी। ला तअतल्ली मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, इताअत तो सिर्फ क्या है, इन्नमा तातु फिल मारूफ, यानी बीवी शोहर की बात माने या इवन एक बच्चा अपने माँ बाप की बात मानेगा तो कौन सी मानेगा, जिसमें अल्लाह के हुक्म को मानने की बात है। इससे ज़्यादा अगर कोई कहेगा तो अपने हक़ से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होगा। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत भी और मिशकातुल मसाबीक में 3665 नंबर की भी रिवायत है। एक और रिवायत वो भी हज़रत अली करमल्लाहु वजहो से ही है कि अल्लाह की मासियत हो तो मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। इससे पता चलता है कि शौहर को अपनी बीवी को खुश करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह ताला को नाराज़ करे, और सेम थिंग बीवी के ऊपर भी ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के लिए, यानी शौहर की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करेगी। और ये रिवायत मुस्नद अहमद की 12116 नंबर की है। फिर आयत नंबर 60 से 61 का टॉपिक है इतात रसूल से गुरेज, मुनाफ़क़त का मज़हर है। यानी अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं मान रहे तो दिल में कहीं ना कहीं निफाक का बीज डल चुका है, और इसमें अल्लाह ताला ने खोल के हम सबको बता दिया कि तुम्हें अल्लाह की बात माननी है। आप देखिए निफाक नज़र नहीं आता, लेकिन निफाक का बड़ा गहरा ताल्लुक रसूल की इताअत से है। मुनाफिक को अल्लाह की बात भी समझ आ जाती है, मरना जीना उसके बाद की मामलात भी समझ आते हैं, लेकिन वो रसूल का तर्ज ज़िंदगी कबूल नहीं करता। उसको लगता है कि इसमें मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी, लिहाजा मुनाफिकाना रविश से आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उस पर मुनाफिक का तर्ज अमल क्या होता है, ये 62-63 पे आएगा। यहाँ इतना समझ लीजिए कि जो भी कानून तोड़ेगा दुनिया में भी सजा मिलने की उम्मीद तो होती है ना, कोई ओवर स्पीडिंग करेगा, सीट बेल्ट नहीं बांधेगा तो जुर्माना लगेगा ना, बस इतनी बात समझिए, जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की बात कहीं भी छोड़ेगा उस पर ज़रूर कोई मुसीबत आएगी। चूँकि ये इसबाब के पर्दे में आती है तो हमें पता नहीं चलता, तो यहाँ बताया गया कि जब बंदे पे कोई मुश्किल आती है तो जिस दिल में निफाक होता है वो क्या कह देता है, ये कहाँ से आ गई, ये क्यों आ गई। अल्लाह कहते फ़कैफ़ इज़ा असाबत मुसीबा, क्यों नहीं ऐसा होता, पर ऐसा क्यों है कि जब तुम पे कोई मुसीबत आती है बीमा कदमत आई दी है उनके हाथों की किए धरे से, तो वो कस्में खाते हुए आ जाते हैं, नहीं नहीं हम तो इस्लाह के लिए ऐसे कहते हैं, हम तो ख़ानदान को जोड़ना चाहते हैं। अल्लाह कहते नहीं, अल्लाह को खूब पता कि इनके दिलों में क्या है, आप क्या कीजिए, फ़ारिदन हम इनसे एराज़ कीजिए और वक़ुल्लहम फ़ी अनफुसिहिम कौलन बलीगा। ये बहुत खूबसूरत बात है। कौल बलीग क्या होता है, कौल कहते हैं बात को, उर्दू में भी बोलते हैं, अकवाल ज़रीं बड़ा मारूफ फ्रेज है हमारे कल्चर में। बलीग बलगा से तबलीग इबलाग पहुँचना, यानी दिलों में पहुँचने वाली बात, दिलों को नरम करने वाली बात। इस्लाह के लिए एहसान ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को किसी बात पे टोक रहे हैं, अपने स्टूडेंट को टोक रहे हैं, इवन अपनी मेड को कोई बात कहते हैं, अगर आपके बात करने के अंदाज में टोंट है, तंस है, सख्ती है, वो नहीं मानेगा। ये बात सिंपल सी है। अब देखिए लिक्विड्स की क्या शान है, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, पानी गिरेगा तो भी इसमें गिर जाएगा और चादर पूरी गीली हो जाएगी। इसकी जगह आप खुश्क आटा रख दें, चावल बखेर दें, वो वहीं पड़े रहेंगे। तो जो नरम बात है ना वो पेनिट्रेटिंग होती है, जस्ट लाइक लिक्विड। अच्छा हमारी बातें पता क्या होती हैं, पत्थर, ताने, तंस, या फिर हवाओं में उड़ जाती हैं एयर की तरह, एक कान से बच्चे सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं। इस्लाह का असूल है कि अगले को बात पहुँचे तो सही। फिर उसके बाद आप देखिए कि आयत 65 से 68 का बहुत ही अहम टॉपिक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को ना मानने वाला मोमिन नहीं हो सकता, ये तो बात पक्की है। फला व रब्बिकला युमिनून, वाहिद मुकाम है कुरान का कि अल्लाह ने कसम किस तरह खाई, आपके रब की कसम, यानी नबी सल्लम के रब की कसम। तो इसमें आपको मुझे अपने आप से ये इंशाल्लाह वादा करना है कि जहाँ बात अल्लाह के रसूल की आ जाएगी मैंने उस बात पे लब्बैक कहना है। कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, सीरत की बात हो, हमने उससे पीछे नहीं होना। और फिर आप देख रहे हैं कि उसमें खुशखबरियाँ बहुत सी हैं। आयत 69 से 70, अल्लाह के नाम याफ्ता बंदे कौन होते हैं। हम सब सूरह फातिहा की रोशनी में हर रोज़ कहते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया। सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, ये आयत अनअमता अलैहिम की तफसीर है। आप इसको सूरह फातिहा की तफसीर के साथ भी जोड़ लीजिए कि सूरत निसा की आयत नंबर 69 बताती कि इनाम वाले लोग कौन से होते हैं, मिनन नबीजीन, अम्बिया कराम, सिद्दीकीन, सिद्दीक, शोहदा और सालेहीन। यानी ये चार कैटेगरीज हैं जिसमें एक इंसान अपने दाखिले की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और जिसको इनका साथ मिल गया वो बच गया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी हमें नबी सल्लम का साथ अता फरमाए और हम दुनिया में भी नेक लोगों के साथ रहें। इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। फिर इसके बाद आयत 71 से 73 में अल्लाह की राह में जंग से फरार मुनाफिकाना तर्ज अमल है। आज जंगे ना भी होना तो दीन के किसी भी तकाजे से जान छुड़ाना ये निफाक है, और आज हम खुद देख सकते हैं उम्मत मुस्लिमा में क्या होता है। इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन जो उस दौर के थे उनके कुछ जुमले थे, उसमें से एक जुमला क्या है, या लैतनी कुंतु माहुम फाफूज़ फौज़न अजीमा। जब मुसलमानों को कामयाबी मिल जाती है तो कहते हैं काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। मुनाफिक की नज़र में कामयाबी क्या है, जंग में फतह मिल जाए, गलबा मिल जाए, और साथ दूसरी बात है कि माल गनीमत में हिस्सा मिल जाए जो अहले दुनिया के लिए सबसे अहम होता है। वो कहते हैं ना कि शहादत है मतलूब मकसूद है मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन मैदान जंग में ज़मीन के टुकड़े लेने नहीं जाता, माल गनीमत लेने नहीं जाता, बल्कि मोमिन को तो शहादत भी मिल जाएगी तो भी कामयाब है, और अगर कामयाब होके गाजी बन के लौटा तो भी कामयाब है। इसीलिए फिर 74-76 की आगे बात में अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में निकलने वाले, चाहे वो मैदान जंग हो, वो मैदान इल्म हो, वो तबलीग का मैदान है, इंसानों की खिदमत का मैदान है, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। आप एक दफ़ा इस रास्ते में जब निकल आते हैं ना तो फिर अल्लाह ताला आपका अजर लिखना शुरू कर देता है। अगर आप देखें तो एक ड्राइवर जो आके ड्यूटी पे बैठ गया, आप वो घंटा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी पे स्टार्ट हो गई। एक ईमान वाला हमेशा जो भी काम करता है, चाहे वो मैदान जंग हो, कल के दौर को ले लीजिए, या आज अल्लाह के दीन के लिए आप ऑन ड्यूटी आ गए, तो आपके लिए नाकामी नहीं है। और हकीकत यह है कि मोमिन अल्लाह के लिए लड़ता है, जबकि गैर मोमिन का मकसद दुनिया और उसके मुफादात होते हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जितनी भी जंगें हुई उसमें कोई किसी ज़मीन के टुकड़ों पे कब्ज़ा करने या तेल के कुओं पे या सोने के ढेर को जमा करने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उसका मकसद क्या होता था कि अल्लाह का दीन गालिब आए। तो यहाँ असल में मोमिनों को रग़बत दी जा रही है कि वो लोग जो गैर अल्लाह का निज़ाम नाफिज करते हैं, तागूती मकासद हैं जिनके, उनके हीले और मकर बड़े कमज़ोर हैं। आज भी दुनिया में आपको मुख्तलिफ जगह में मुख्तलिफ जंगें लगी हुई दिखती हैं, तो आप और मैं उन सारी चीज़ों के मुकाबले में क्या जमा करें, ईमान की कुव्वत। अपने बच्चों के दिलों में ईमान डालिए, उनके दिलों में अल्लाह ताला से मोहब्बत डालिए, नबी की मोहब्बत डालेंगे। और दूसरी चीज़ आप देखिए आयत 77 में, सब्र महज, डोंट बी रिएक्शनरी। जब तक असबाब जमा ना हो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, तो जुल्म के मुकाबले में दरगुजर का हुक्म है। और ये आयतें पूरे मक्की दौर में सामने थी, कुफ़ वही दिया को हाथ रोक के रखो। आप देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे लोग मक्का में भी थे। ठीक है, खालिद बिन वलीद को तो इस्लाम ज़रा देर से मिला, लेकिन हज़रत अली जैसे, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे मुसलमान, क्या वो ये नहीं कहते होंगे कि हमें इजाज़त दीजिए हम अबू जहल से लड़ाई करें, वो हम पे जुल्म क्यों करा है? क्या बिलाल के ऊपर जुल्म व सितम देकर हज़रत उमैया पे गुस्सा नहीं आता होगा? लेकिन कुफ हुई दिया को। आपके मेरे लिए आज इसमें इतनी बात है अमल की कि मुसलमानों को अपने आप को यूनाइट करना है, अपने अंदर ईमान लाना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद फिर जो हालात हों उसमें अल्लाह पे नज़रें लगाते हुए अमल करना है। और ये सारा कुछ कब समझ आता है? जब कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का फ़ायदा थोड़ा सा है, वला आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, आखिरत उसके लिए अच्छी है जो तकवा अख्तियार करता है, वला तुज़लमूना फतीला, यानी मुसलमान का ईमान बिल आखिरा मजबूत हो। आयत 78-79 में मौत का वक्त तय शुदा है, इस हकीकत को खोला गया कि जिसमें ऐनमा तकून युद्रिककुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हें मौत आ जाएगी। अमूमन लोग जिहाद के लफ्ज पे डर जाते हैं कि फिर तो हम मर जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने पैगाम दिया तुम जहाँ भी होगे मौत तो आएगी, चाहे मज़बूत किलों में हो। वलव कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, क्या घरों में रहने वाले नहीं मरते? आप देखिए कि क्या लोग मैदान जंग में ही मरते हैं? सफ़र में कितने हादसात होते तो क्या लोगों ने सफ़र छोड़ दिया? कितनी कश्तियाँ डूबी तो क्या कश्ती पे सफ़र करना छोड़ दिया? कितने लोग डेथ बेड पे बिस्तरों पे मरे तो क्या रोज़ रात को बिस्तर पे लेटना लोगों ने छोड़ दिया? तो यकीन रखिए कि मौत का वक्त तयशुदा है। इसके बाद आयत 80 और 81 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। ये बहुत अहम बात है। कोई हुक्म, कोई चीज़ जिस तरह कुरान पाक से साबित हो सकती है ना, ऐसी हदीस से भी साबित हो सकती है। इसको हुज्जियत हदीस भी कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को आपके मेरे सामने रख दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अहमियत जानो। ये जो लफ्ज है ना, मैं युति रसूल फ़कद अतल्ला व मन तवल्ला फ़मा अरसलना कालेहिम हफीज़ा, जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत की, और जो मुंह फेर ले तो हमने आपको उसके ऊपर निगेबान नहीं बना के भेजा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना है, आपके मेरे लिए अमल की बात ये है।